साझा के बाद भी हम एक जाति प्रथा नहीं मिटा पाए।
हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत कोई मायका लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता।
कब तक और कितनी बार आरक्षण और कहां कहां तक आरक्षण?
दलित पीड़ित शोषित ट्राइबल उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है।
इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं?
समाज में जातीय संघर्ष रहेगा, राष्ट्र पीड़ित रहेगा।
दलित और आदिवासी और देश का गरीब उठेगा तो सत्ता का सिंहासन हिलेगा।
शायद ही कोई दल जो है वो ऐसी मांग करे।
आरक्षण का फायदा केवल कुछ परिवारों ने उठाया है और उनके परिवार उठाते जा रहे हैं।
और अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए।
आरक्षण का एक पैटर्न टूटेगा तो जो है आइस ब्रेक किसी ने नहीं किया है।
मुझे लगता है कि राष्ट्र का पूर्ण विकास हो सकता है।
सोशल मीडिया पे भी हमने नजर रखी,
पूरी फोर्स और पूरे मजिस्ट्रेट सभी शहर में घूम रहे हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एंड व्यूज यानी एनवी रेडियो के नए एपिसोड जिसका नाम है क्या सोचते हैं आप। देश प्रदेश के बदलते घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं आप, बदलती राजनीति पर क्या सोचते हैं आप, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की जो राजनीतिक गलियारों से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है, और उसमें जानेंगे आपके विचार, पूछेंगे आपसे क्या सोचते हैं आप। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं SC ST एक्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। एक ऐसी व्यवस्था जिसे लागू किया गया देश की आजादी के बाद उन्नति की रफ्तार में तेजी लाने, हर नागरिक के निजी विकास के लिए, जिस पर जब भी सदन में कोई प्रपोजल या संशोधन आए तो वह तत्काल सर्वसम्मति से निर्विरोध पारित हो जाते हैं, और यदि कोर्ट तथ्य तर्क वितर्क जनसमूह की भावनाओं के मद्देनजर वास्तविकता और अधिनियमों के हो रहे दुरुपयोगों पर अपनी टिप्पणी या आरक्षण के विपक्ष में कोई भी संशोधन या फैसला सुना भी दे तो सत्ता सुख की लालसा में हमारे राजनेता कोर्ट की अवमानना करने से भी नहीं चूकते।
हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत कोई मायका लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता।
सुना आपने मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान को कुछ इस तरह तिल मिला गए मानो उनकी कुर्सी हिल सी गई हो। संविधान लागू हुए 66 वर्ष होने के बाद भी आरक्षण व्यवस्था आज भी वैसी की वैसी ही है। हर नेता को कोसना अच्छी बात नहीं है। हमारे कुछ नेता अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं। हम बात कर रहे हैं 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली प्रथम महिला और हमारी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की,
कि आज 60-70 साल के आजादी के बाद भी हम एक जाति प्रथा नहीं मिटा पाए। 10-10 साल ये मैंने तो कई बार मैंने भी अपराध किया है। मैं जब सांसद बनने के बाद 2 बार मेरे सामने यही संविधान में संशोधन करके आने वाले 10 साल आरक्षण हो पड़ा। नो विचार क्यों हुआ? हम नहीं सोचते कि क्यों नहीं हो पाया।
दलगत और जाति राजनीति में विशेष दर्जे वाले प्रदेश बिहार के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव की सुनिए।
इसलिए इसको अगर समाप्त करना है पूरे राष्ट्र को और इस सदन को चिंतन करना चाहिए कि हिंदुस्तान से जाति प्रथा का समूल नाश कर दिया जाए, वह कैसे और क्यों, इस पर चिंतन करना चाहिए।
डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर आरक्षण की राजनीति करने वाले लोग देश को अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब की बातों को पूरी ईमानदारी से ना तो आपको बताते हैं ना ही खुद उनका पालन करते हैं। आरक्षण की वकालत करने वाले जहां सिर्फ राजनीतिक पार्टियां और विशेष समुदाय ही है, वहीं देश में बड़ी संख्या में मौजूद अनारक्षित सामान्य वर्ग इसके विरोध में है। आखिरकार इन्हें भी इसका खामियाजा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न सिर्फ शिक्षा और नौकरी में ही नहीं बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं में भी उठाना ही पड़ता है। आइए सुनते हैं उनका दर्द।
रिजर्वेशन होना चाहिए, बहुत सही बात है, लेकिन जाति पे क्यों? इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं?
पदोन्नत का आधार जो है सरकारी नौकरियों में अपने देश में वह सीनियरिटी एंड मेरिट है। अगर मेरिट है दलित अधिकारी में, जो बहुत अधिकारियों में है मैं जानता हूं, तो उनको कोई नहीं रोकता। और अगर सीनियरिटी में नंबर आता है तो उन्हीं का प्रमोशन पहले होता है।
ठीक है।
तीसरी बात, यह कहना कि उच्च पदों पर वह पहुंच नहीं पा रहे हैं यह गलत है। मैं उदाहरण दे के कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अभी पिछले शासन के दौरान जो उच्च पद थे, उच्च पदों पर लगभग 100%, लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दलित अधिकारी ही बैठे हुए थे।
और अब आपको सुनवाते हैं हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकारों को, जिन्होंने आरक्षण और उसके परिणामों को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी।
विरोधी पक्ष का सवाल है कि कब तक और कितनी बार आरक्षण और कहां कहां तक आरक्षण?
उच्च वर्ग के गरीब व्यक्ति को आरक्षण की ज्यादा जरूरत है या आर्थिक रूप से संपन्न पिछड़ी जातियों? जिस आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत पिछड़े समाज की तरक्की की भावना से की गई थी, उसे अब अधिकार समझा जाने लगा है।
20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट में परिवर्तन ने जहां सामान्य जन को खौफ मुक्त कर दिया, वहीं नाराज SC/ST वर्ग आक्रोशित होकर न सिर्फ हिंसा पर उतर आया बल्कि पूरे प्रजातंत्र को हिला कर रख दिया। और राजनेता भी इन वर्गों को समर्थन देते चले आ रहे हैं। क्या कहते हैं हमारे नेता? शुरुआत करते हैं रामविलास पासवान से।
मंडल कमीशन जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा 5 साल के बाद। 1992 को 16 नवंबर को मंडल कमीशन का जजमेंट आया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नरसिम्हा राव जी को। नरसिम्हा राव जी ने जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन को पार्लियामेंट में पेश किया, संविधान संशोधन करके के हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन इस देश में एक से एक लोग हैं, एक चला गया कोई, उसने कहा कि हाँ परमिशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2000 में और 2001 तीन संशोधन हुए। पहला संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि नहीं सीनियरिटी रहेगी। फिर एक कोई आदमी चला गया, उसने कहा हाँ सीनियरिटी तो रहेगी लेकिन जो है रिलैक्सेशन नहीं रहना चाहिए, आर्टिकल 335 का उल्लंघन होता है। फिर संविधान में संशोधन हुआ और फिर कहा गया कि नहीं अटल जी के समय में कि नहीं सीनियरिटी भी रहेगी और रिलैक्सेशन भी रहेगा। फिर उसके बाद कहा कि रिलैक्सेशन तो रहेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, 50% ज्यादा नहीं होगा। फिर संविधान में संशोधन हुआ 2001 में अटल जी के समय में और उसमें कहा गया कि नहीं जहां 50% से ज्यादा हम वायलेशन नहीं करेंगे लेकिन स्पेशल रिक्रूटमेंट चलाने का हमको अधिकार रहेगा कि यदि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, बैकवर्ड क्लासेस का कोटा पूरा नहीं हुआ है और 50% तक हम जाते हैं और उससे पूरा नहीं होने वाला है तो हम अलग से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नागराज गया सुप्रीम कोर्ट में और उसने कहा कि सारे के सारे संविधान संशोधन जो हुए हैं असंवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं असंवैधानिक तो नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, वैधानिक है लेकिन कहा क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। नाइन मेंबर्स बेंच कहता है मंडल कमीशन का कि शेड्यूल कास्ट के लिए क्रीमी लेयर नहीं है और वो कहता है कि कोर्ट कहता है कि क्रीमी लेयर रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या कहता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कि बैकवर्डनेस का पहचान करना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का पहचान बैकवर्डनेस नहीं है, शेड्यूल कास्ट का पहचान अनटचेबिलिटी है। कौन कास्ट कहां जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का काम है रिकमेंड करना और रिकमेंड करके जब मामला आता है तब RGI के पास में जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको जब देखता है तब वो जाता है SC/ST/BC कमीशन के पास में। SC/ST/BC कमीशन जब उसको पास करता है तब वो जाता है मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट जब पास करता है तब जाता है कैबिनेट में, और जब कैबिनेट पास कर देता है तब आता है यहां। लेकिन जिसको जहां मन हो रहा है इसको वहां घुसा दो, उसको वहां घुसा दो, उसको वहां कर दो, राजनीतिक लाभ लेने का काम करो।
अब सुनिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदले हुए सुर।
दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल, उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है, फिर भी बाबा साहब अंबेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते।
और अब सुनिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को।
सुप्रीम कोर्ट के मत से हम सहमत है लेकिन इस कानून को मतलब कुछ डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है।
आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे पर हर कोई SCST वर्ग का मसीहा बनकर सामने आया। ऐसे में कांग्रेस भी सामने आई, देर से ही सही कोई मुद्दा तो उठाया। अब सुनते हैं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को।
भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दलित और आदिवासी विरोधी है। पहले ये देश को हिंदू और मुसलमान पर लड़ाना चाहते थे, अब दलित के उत्पीड़न के आधार पर ये वोट बटोरना चाहते हैं।
क्या कभी देश में ऐसी पार्टी भी आएगी जो कहेगी हम आरक्षण खत्म करेंगे, हमें वोट दीजिए? हालांकि हो सकता है ये मात्र कपोल कल्पना हो। खैर, इसी विषय पर बात करते हैं बुद्धिजीवियों से। शुरुआत करते हैं रिटायर्ड DGP CRPF NK त्रिपाठी से।
भारत की जो इस समय व्यवहारिक राजनीति है उसको देखते हुए शायद ही कोई दल जो है वो ऐसी मांग करे, और यदि ऐसी मांग करता है तो शायद ही वो जीतने की स्थिति में आ जाए, और अगर वो जीत भी जाता है तो भी 2/3 बहुमत से ही संविधान को बदलना होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो व्यवस्था की गई है वो संविधान में ही व्यवस्था है, और संविधान को अगर परिवर्तित करना है तो 2/3 बहुमत की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भारत में ऐसी पार्टी आ जाएगी जो 2/3 बहुमत लेके आगे बढ़ेगी।
इसी सिलसिले में बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सरोठिया से।
मेरी स्पष्ट मान्यता है कि आरक्षण से किसी भी समाज का कोई उद्धार नहीं हो सकता। अगर उद्धार हो सकता होता तो 70-71 साल में अब तक हमारे प्रदेश के जो दलित और आदिवासी भाइयों का कल्याण हो चुका होता, लेकिन हमने देखा कि 70 साल में आरक्षण का फायदा केवल कुछ परिवारों ने उठाया है और उनके परिवार उठाते जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई दल खड़ा हो, तो मैं आपसे मानता हूँ कोई भी दल इसके लिए तैयार नहीं होगा।
अच्छा।
क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ चंद परिवार जो है आरक्षित वर्ग का फायदा उठा रहे हैं, जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, ये तथ्य सामने नहीं आएंगे, तब तक ये वोट बैंक की राजनीति बंद नहीं होगी।
अब चलते हैं बैतूल और बात करते हैं पत्रकार सुनील दुबे से।
मेरा मानना तो यह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो भी लोग आरक्षण के खिलाफ हैं उनको डायरेक्ट सीधे आरक्षण के खिलाफ वाली बात नहीं करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल चुका है उसको दोबारा नहीं मिले। तो इससे ये होगा कि जो दूसरे वास्तव में जो गरीब लोग भी हैं, एक तो उनको आरक्षण मिलेगा और इस आरक्षण का एक पैटर्न टूटेगा। अभी तक इसको जो है आइस ब्रेक किसी ने नहीं किया है, अभी तक किसी ने छूने की कोशिश की तुरंत हंगामा हो गया, और देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट ने जरा सा कुछ एक CRPC में किया और इतना बड़ा हंगामा हो गया।
इस मसले पर शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के विचार सुनते हैं और बात करते हैं गीता झुंझानी और छाया कलम्बे से।
जातिवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए, हमारा देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है, और अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वो भी सुविधाएं बढ़ाइए, पूरी सुविधाएं दीजिए, फीस की सुविधा दीजिए, किताबें मुहैया कराइए, उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए, उसके बाद उनको सामने खड़े होने दीजिए किसी को भी। तो आर्थिक मुद्दों पर आरक्षण एक बार समझ में आता है।
OBC जंग वाले इसमें आती हूँ, आरक्षण के कारण हमारे देश में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म हो चुकी है। अगर हमें आरक्षण चाहिए तो जातिवाद के आरक्षण को हटाकर आय के आधार पर हमें आरक्षण रखना चाहिए, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्र का पूर्ण विकास हो सकता है।
हमने इस मसले पर कुछ युवाओं से भी बातचीत की, आइए अब आपको सुनवाते हैं धनंजय ठाकुर को।
आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और मुझे भी आरक्षण के कारण कॉलेजों में एडमिशन या फिर नौकरी में जब अप्लाई किया सरकारी नौकरी में, तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम हुआ है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट सरस्वती से, जो स्वयं भी आरक्षण के खिलाफ हैं, बल्कि एक मैसेज भी दे रही हैं अपने युवा साथियों को।
मैं खुद ST कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मेहनत करने वालों के लिए कोई रिजर्वेशन या कोई आरक्षण की जरूरत नहीं होती, आप वैसे भी आगे आ सकते हो, तो आप इस तरह की डिमांड करना तो मेरे लिए मतलब रिडिकुलस कि आप एक तरफ इक्वलिटी की बात कर रहे हो और एक तरफ आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो। रिजर्वेशन किसको मिलता है? जो निचले तबके के लोग होते हैं, तो इस तरह रिजर्वेशन को हटाएंगे तब तो आप इक्वलिटी के लिए आगे आएंगे।
आरक्षण के पक्ष में बातें करना तो आसान है, लेकिन इसके विरोध में न सिर्फ कुछ कहना और उस पर क्रियान्वयन हो पाना काल्पनिक सा ही है। खैर, कोर्ट के सकारात्मक निर्णय और आरक्षित वर्ग के दंगा फसाद के बाद सामान्य वर्ग ने भी जुनून और शिद्दत के साथ सालों से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया, जिन्होंने ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे ही जताया। इसी मसले पर हमने भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े से बात की।
पूरे शहर में शांति है और पूरी फोर्स और पूरे मजिस्ट्रेट सभी शहर में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी भोपाल की जनता को कि किसी प्रकार की अपरिस्थिति यहाँ पर नहीं हुई है और पूरी धैर्य और शांति बनाए रखे हुए।
आइए अब बात करते हैं भोपाल SP S धर्मेंद्र चौधरी से।
ये तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं था, इसलिए पूरे ज़िले में व्यवस्था लगाई और पूरे शहर में पेट्रोलिंग चल रही है। हर थाने में दो दो तीन तीन अतिरिक्त गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं और इस पे सोशल मीडिया पे भी हमने नज़र रखी कि कोई अफवाह ना फैलाए। और पेट्रोलिंग और गश्त के अलावा हमारे फिक्स पिकेट्स लगे हैं, गिरफ्तारी पार्टियाँ और भी जो एहतियात बरत सकते हैं वो हमने इसको कदम उठाए हैं।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। NV रेडियो के अगले कार्यक्रम में किसी नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे और पूछेंगे आपसे क्या सोचते हैं आप। अब दीजिए News & Views की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।